वनस्पति और जीव विज्ञान दोनों के बारे में इस पूरे अध्याय में विचार किया गया। जीव की अपनी जो पिक्यूलियर क्वालिटीज़ हैं वो उसके अपने भाव हैं, इसलिए सबसे पहले जीव में ही वो भाव पाए जाते हैं, इस बात की चर्चा यहाँ कर ली गई। फिर इस अध्याय में जीव को विभाजित किया गया है। ऐसा विभाजन आज के साइंस के पास नहीं है। कैसा विभाजन? कि कुछ जीव हैं जो संसार में रहते हैं, कुछ जीव हैं जो संसार से मुक्त हो गए। बहुत मुश्किल है ऐसे जीवों को जान पाना जो संसार से मुक्त हो गए। जो संसार में जीते हैं, 10 प्राणों से जीते हैं, उनको तो हम पकड़ सकते हैं, वो तो हमारी अप्रोच में है, और उसमें से भी जो सूक्ष्म हैं जीव, उनको भी हम नहीं पकड़ सकते हैं। तब यहाँ पर और विशेष रूप से संसारी जीव भी कितने प्रकार के हैं, तो स्थावर हैं और त्रस जीव हैं। मोटा मोटा हिसाब तो बता दिया, मोबाइल और इमोबाइल, जो अपने बचाव के लिए उपाय कर लेते हैं वे मोबाइल, उनको अपन त्रस जीव कहते हैं, वो 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक होते हैं, और जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अपने को हट नहीं पाते हैं, पेड़ को मारिएगा वो कहाँ जाएगा भाग करके बेचारा, पर चींटी को जरा ऐसा हाथ लगा दीजिएगा वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, है ना। तो ये मोबाइल विंग्स कहलाते त्रस जीव। इस तरह 2 प्रकार का विभाजन किया। जैन धर्म में जितनी सूक्ष्मता से विभाजन किया गया है उस पर आश्चर्य होता है। सूक्ष्मता से करने के पीछे उद्देश्य क्या था? हमारा सिर्फ जानने का उद्देश्य नहीं है, बड़ा मज़ा है। हम लोग जानने के साथ साथ जीने की प्रक्रिया बताते हैं। हम कुछ इस तरह से जानते हैं कि उससे हमारा जीवन संभले। हम जीवों के बारे में सूक्ष्मता से इसलिए जानते हैं ताकि उन जीवों की हम रक्षा कर सकें। हमारे पूरे जानने के पीछे अहिंसा छुपी हुई है। इसलिए जब स्थावर जीवों का वर्णन आया तो कह दिया कि पृथ्वी में भी जीवन है। बहुत मुश्किल है कि आज का कोई साइंटिस्ट पृथ्वी में जीवन माने, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जब रॉयल सोसाइटी के सेक्रेटरी फॉस्टर माइकल ये जगदीशन बसु के पास पहुँचे उनकी लेबॉरेटरी में, और जगदीशन बसु ने जब उनको एक रिकॉर्डिंग्स दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये कर्व ऑफ मसल, ये तो जो है एक किसी मांसपेशी का कर्व है, ये तो जो आपने बनाया है, रिकॉर्ड किया है, आलेखन किया है, वो तो किसी जीवित व्यक्ति का है। तो जगदीश चंद्र बसु हंसे और उन्होंने कहा कि ये एक टिन धातु होती है, उस धातु का आलेख है, ये रिकॉर्डिंग उस धातु की है, इसका मतलब वो धातु में भी जीवन है। यही तो हम कह रहे हैं कि धातु भी पृथ्वी का एक ही है, उसमें भी जीवन है। आप आश्चर्य करेंगे कि जल में जीव हैं, ये तो हम सब लोग जान लेते हैं, लेकिन जल ही जीव है ये बहुत मुश्किल है। अग्नि में जीवन है लेकिन अग्नि ही जीव है, अग्नि को अपना शरीर बना के रहने वाला। जब साइंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई और जब उसमें ये कहा गया कि जल ही जिसका शरीर है वो भी एक जीव है, तो उनको कहा, उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई हम जल में कितने जीव हैं ये तो काउंट कर सकते हैं एक बूंद में, लेकिन वो बूंद अपने आप में जल कायक है, ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। अग्नि के लिए एक बिजारे वीट्स ऑफ एबीज, ये शनन ब्राउनली, एक ब्राउनली हुए हैं, उनका लेख है जिसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि अग्नि में भी जीवन है, अग्नि स्वयं अपने आप में जीवन है। तो ऐसी 5 जो स्थावर जीव हैं जिनका अपन रोज उपयोग करते हैं, देखिएगा वायु का एक जीव का उपयोग कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, हवा क्या ले रहे हैं, वायु का एक जीव का मजा ले रहे हैं, वो मरें जिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको मजा आना चाहिए। हम अग्नि जलाते हैं, अग्नि से मजा लेते हैं, लाइट से मजा लेते हैं, ले रहे हैं अपन, ये सब इनमें सब में जीवन है ऐसा कभी हमको एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत इस तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब में जीवन है। हम लोगों के साथ मजा ये है कि हम पर्यूषण में वनस्पति का जितना ध्यान रखते हैं शायद अग्नि, जल, वायु और अग्नि का नहीं रखते हैं। इतनी हैवी लाइटिंग करते हैं कि अग्नि का एक कितने ही मरें, भले ही हमने 2 सब्जियां नहीं खाई। इतना कंट्राडिक्शन हमारे लाइफ में है, और ये विरोधाभास क्यों है? इस विरोधाभास का कारण ये है क्योंकि हमने प्रॉपर नॉलेज तो गेन किया नहीं। हम जानते सब हैं लेकिन जानने के साथ साथ जीने की जो प्रोसीजर है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं आप, नहीं, हम देखें अपन लोग कैसा करते हैं। वनस्पति में जीवन है ये तो हमको लगता है, लेकिन ये ट्यूबलाइट जल रही है इसमें कोई जीव राशि है इसमें नहीं मालूम पड़ता, ये तो हमको सुंदर मालूम पड़ती है। जो छोटी छोटी रोशनी जलती है तो हमको सुंदर लगती है, हमको फूल सुंदर लगता है, लेकिन फूल में जीवन है ये हमको बहुत आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। ये आचार्य भगवंत हमें ये सब चीज़ें इसीलिए बता रहे हैं। अपने पास बस थोड़ा सा समय है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप जूलॉजी और बॉटनी से भी अतिरिक्त जैन धर्म में पढ़ेंगे। मैं तो हमेशा कंपेयर करता रहता हूँ दोनों चीज़ों को, बहुत सारी सामग्री है पर आज इसमें हम इतना अधिक नहीं बता पाएंगे आपको, पर इतना ज़रूर हम आपको आज विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वी आर रिच इन साइंस, हम लोग विज्ञान के मामले में बहुत समृद्ध हैं। आज का विज्ञान जितना समृद्ध है उससे कहीं अधिक हम भी समृद्ध हैं। एक हरमन जैकोबी हुए हैं, उन्होंने लिखा है द उमा स्वामी वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। कोई उमा स्वामी हुए हैं जो पहले वैज्ञानिक हुए हैं भारत के, ये उमा स्वामी का ही तत्वार सूत्र है। और अभी इस पर जो समंतभद्राचार्य का गंधहस्ती महाभास लिखा गया है उसकी खोज चल रही है। अगर अपने हाथ में कभी गंधहस्ती महाभास आ गया तो फिर तो देखिएगा कि इन सूत्रों की क्या व्याख्या होती है। अब आने वाले 5वें अध्याय में जब आप देखेंगे पूरा फिजिक्स, तो चमत्कृत हो जाना चाहिए वाकई में इन सब चीज़ों को पढ़ के। चमत्कृत होने से मतलब गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। चलिएगा देखते हैं जीव के बारे में कितनी जानकारी है। हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि जीव क्या चीज़ है। जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, उसके क्लासिफिकेशन है कि कितने प्रकार से है। देखिए मुक्त जीव है, संसारी जीव है, फिर संसारी में भी त्रस हैं, स्थावर हैं, त्रस में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 5 इंद्री में भी संगी हैं, असंगी हैं, मन वाले, बिना मन वाले हैं। और इधर स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इतना क्लासिफिकेशन हो गया। इन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए, ये इसके पीछे उद्देश्य है। ये तो हो गया जीवों का क्लासिफिकेशन। अब कहते हैं कि अगर जीव एक गति से दूसरी गति में जाए तो हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू माइग्रेट, वो किस तरह से ट्रांस माइग्रेशन करेगा एक गति से दूसरी गति में। मैंने आप आश्चर्य करेंगे, इसके बाद कहेंगे कि वो जन्म लेगा तो किस तरह लेगा और मरण होगा तो किस तरह करेगा, उसका अपना ओरिजिनल नेचर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो अगर ट्रांसमाइग्रेट करता है जीव एक गति से दूसरी गति में तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो जन्म लेता है तो उसके शरीरों की क्या स्थिति है, और जब वो मरण करता है तो कितने तरह से मरण कर सकता है, ये सब इस तरह से दूसरे अध्याय में दिया है। अपन पढ़ते हैं कि जीव जब हम एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो हमारी बीच की क्या स्थिति बनती है। ध्यान रखें हमारे साथ एक ब्लूप्रिंट जो हमें अपने आगामी जीवन में अपने शरीर को बनाना है वो हम यहाँ से लेके जाते हैं। तेजस और कार्मण शरीर, ये दो शरीर विग्रह गति जिसको कहते हैं या ऋजु गति, जब हम किसी दूसरे गति में जाते हैं तो उसे विग्रह या ऋजु गति दो गतियों के अंतर्गत विभाजित करते हैं। देखें अपन कि किस तरह से उस गति में क्या होता है। विग्रह गतौ कर्म योगा, यही ना यहाँ से करना है। हाँ, विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गति में अर्थात जब एक शरीर को छोड़ करके, विग्रह का मतलब होता है शरीर, शरीर की रचना के लिए की जाने वाली गति का नाम विग्रह गति है। और विग्रह का मतलब एक और होता है मोड़ा, आप समझेंगे बैंड जिसको कहेंगे, तो विग्रह का अर्थ मोड़ा भी होता है, वक्र गति, टेढ़ी मेढ़ी गति, और या फिर विग्रह का अर्थ है शरीर को बनाने के लिए की जाने वाली गति। तो शरीर की संरचना के लिए जब गति करता है व्यक्ति आगामी शरीर के लिए प्राप्त करने के लिए, तब उस विग्रह गति में कर्म योगा, कर्म उसके साथ रहते हैं, तैजस और कार्मण शरीर ये उसके साथ। आप ऐसा समझिएगा कि उसके अपने जीन्स, उसके अपने क्रोमोसोम्स, जो उसको वहाँ पर अपने शरीर को जिस तरह रचना करनी है वो सब अपने साथ एक ब्लू प्रिंट लेकर के वो चलता है कि वहाँ मुझे किस तरह से बनाना है। तो विग्रह गतौ कर्म योगा, अनुश्रेणी गति, और ऐसे ही नहीं कहीं से कहीं चला जाए, जीव आकाश की पंक्तियाँ जैसी निर्धारित हैं वैसा ही जाता है। और अविग्रह जीवस्य, जीव की गति बिना विग्रह वाली भी होती है, अर्थात जिसमें कि वो कोई मोड़ा नहीं लेता है, इसे ऋजु गति भी कहते हैं। ये गति भी जीवों के होती है, मुक्त जीवों के तो विग्रह से रहित ही गति होती है अर्थात सीधी गति होती, इसलिए लिखना पड़ा कि अविग्रह जीवस्य, जिनकी विग्रह से रहित गति होती है, शरीर से रहित गति कह लीजिएगा और या कि टेढ़े मेढ़े गति से रहित, वो सिद्धों की होती है। लेकिन विग्रहपति च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, लेकिन जो संसारी जीव हैं उनकी विग्रह गति भी होती है और ऋजु गति भी होती। अगर हम यहाँ से मरकर के दूसरी जगह जाना चाहें तो हम सीधे एक समय में पहुँच सकते हैं, या फिर एक बार मोड़ा लेकर के, या दो मोड़े लेकर, या मैक्सिमम तीन मोड़े लेकर के अपने स्थान पर पहुँच सकते हैं। कभी आप इसके बारे में तीन लोग के नक्शे में और इसको करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। मैं एकदम आपको इमेजनरी तो नहीं बता सकता हूँ। सपोज़ करें तई कि कोई जीव है वो यहाँ पर है और उसे जन्म लेना है यहाँ पर, तो वो सीधा ऐसा नहीं जाएगा, वो पहले हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर उसके बाद 90 डिग्री वर्टिकल वहाँ जा करके जन्म लेगा, ये एक मोड़ा लेगा। अगर मान लो उसे यहाँ उत्पन्न होना है तो फिर वो अपने हिसाब से ऐसे जा करके और दूसरे मोड़े के बाद वहाँ उत्पन्न होगा। इस तरह से ये संसारी जीव या तो सीधा, अगर मान लीजिए सीधा यहाँ से यहाँ जाना है तो सीधी गति कर लेगा, ये ऋजु गति कहलाती है, और मोड़ा लेकर के जो गति हुई वो विग्रह गति कहलाती। संसारी जीव के दोनों प्रकार की गति होती है। और प्राक चतुर्थ्या अर्थात वो तीन समय में पूरी हो जाती है। समय क्या कहलाता है? सेकंड का भी लाखवां हिस्सा, बहुत सूक्ष्म है समय। उतने समय में हम अपना नया शरीर बनाना शुरू कर देते हैं। तीन समय तक हम कहीं दूसरी जगह, माने एक शरीर को छोड़ के बिना शरीर के तीन समय तक रहते हैं, चौथे समय में तो हम अपना शरीर बनाना शुरू कर देते हैं। बीच में सिर्फ इतना ही मैक्सिमम गैप अगर होता है तो तीन समय का होता है, एकौ दौ तीनवा नाहार का। और इसीलिए जब तक कि जीव विग्रह गति में रहता है तब एक समय, दो समय या तीन समय के लिए ही औदारिक या वैक्रियक शरीर के लायक वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है, तैजस और कार्बन शरीर के साथ ट्रांसमाइग्रेट करता है, उसी को अनाहारक अवस्था बोलते हैं। आहारक मतलब शरीर को की संरचना शुरू कर दी, उसके लिए मटेरियल करेक्ट करना शुरू कर दिया। अनाहारक मतलब अभी कोई मटेरियल करेक्ट नहीं कर रहा है वो, और विग्रह गति में नए शरीर की संरचना के लिए जा रहा है। ये इतने सूत्र हो गए। अब देख, ये तो हो गया पूरा पुनर्जन्म। अगर हम देखें तो इतने सूत्रों में पूरी पुनर्जन्म की चर्चा आचार्य भगवंतों ने कर दी। अब कहते हैं कि जन्म हुआ तो जन्म कितने तरह से होगा? सम्मूर्षण गर्भोपादा जन्म, यहाँ संसारी जीव तीन ही प्रकार से जन्म लेते हैं। सम्मूर्षण स्पॉन्टेनियस विदाउट जन्म, तो अपन सब माँ और पिता के द्वारा जन्म लेते हैं, वो गर्भ जन्म कहलाता है, जिसमें कि हम माँ के पेट में अपना शरीर बनाते हैं, वो गर्भ जन्म कहलाता है। उपपाद जन्म वो होता है जहाँ देवों के लिए एक सैया के समान वो उत्पत्ति स्थान है, और वहाँ वो देव अंतर्मुहूर्त में अपने पूरे शरीर को यौवन अवस्था के योग तैयार करके, जैसे सोते से जाग जाते हैं ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, वो उपपाद जन्म कहलाता है। उपपाद सैया देवों के पास है, लेकिन उपपाद जन्म नारकी की भी होता है, पर वैसा नहीं होता, उनके लिए तो तकलीफ पूर्वक ही जन्म होता है, हालांकि उनके जन्म को भी उपपाद जन्म कहते हैं। तो जन्म ने के तीन ही ढंग हैं, या तो सम्मूर्षण रूप से जन्मेगा जीव, या कि गर्भ रूप से जन्मेगा, या कि उपपाद जन्म लेगा। और सचित्त सीत समृता सेतरा मिश्रास चैकस तद्यो नया, और जो उत्पत्ति स्थान हैं जिनमें कि जीव अपना न्यूक्ली बनाएगा, आज की भाषा में उत्पत्ति मतलब न्यूक्ली, ये जो आज कर रहे हैं कि एक शेल निकाली और उस पर जो है उसके एग को, एग की न्यूक्ली को स्थापित कर दिया, मतलब क्या किया आपने, न्यूक्ली दे दी, मतलब जीव को उत्पन्न होने के लिए आपने उत्पत्ति स्थान दे दिया। अब कोई भी जीव जो उस लायक है वो वहाँ आके जन्म ले लेगा, आज की भाषा में उसको क्लोनिंग कहते हैं, और हम चमत्कृत हैं, अरे वाह, और हमारे यहाँ तो पहले से ही कहा गया है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि उत्पत्ति स्थान जो है, हमें सिर्फ उत्पत्ति स्थान मिल गया तो हम जन्म ले लेंगे। कोई भी जीव आकर के वहाँ जन्म लेगा जो उस नेचर का होगा, जिसके क्रोमोसोम्स, जिसकी जीन्स वैसी होंगी, मतलब जिसके नाम कर्म जैसे होंगे, वो वहाँ जा कर के उत्पन्न हो जाएगा, और उसको जैसा मटेरियल मिलेगा वैसा बॉडी कंस्ट्रक्ट कर लेगा। ये भी है, अब जैसे कि आपके पास ईंट चूना पत्थर जिस क्वालिटी का है बिल्डिंग वैसे ही बनेगी, उसी तरह से जैसा मटेरियल है वैसा अपना शरीर उसमें से बना लेगा। वो सचित्त भी हो सकता है, वो न्यूक्ली, वो उत्पत्ति का स्थान, वो योनि सचित्त अर्थात जीवन से रह सहित भी हो सकती, याचित हो सकती, ठंडे प्रकार की हो सकती, गर्म प्रकार की हो सकती, ढकी हुई हो सकती, उगड़ी हुई हो सकती, या इन सब को मिला दिया जाए। तीन तो ये हो गए, और तीन इनके विपरीत, और तीन मिल करके सचित्त है, अचित्त है, सचित्त अचित्त है, शीत है, उष्ण है, शीतोष्ण है, समृत है, ढकी है, उगड़ी हुई है, या आधी ढकी आधी उगड़ी हुई है। देखो अपन कितने जीव ऐसे ही खुले खुले देखते देखते अभी तो थे नहीं और एकदम उत्पन्न हो गए, और दो पत्थर रख दीजिएगा एक के ऊपर एक, और उस पत्थर के बीच में थोड़ा मॉइस्चर हो, थोड़ा गोबर ओबर हो, आप पत्थर थोड़ी देर में उठाएंगे एक बिच्छू मिलेगा आपको, अरे ये कहाँ से आ गया, ये सब संमूर्छन जीव, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहलाती साइंस की भाषा में, जिसमें कि संमूर्छन सब चारों तरफ से जीव अपने शरीर के योग पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करके वहाँ उत्पन्न हो जाता है। ये इस तरह से इनके उत्पत्ति के प्रकार हैं, 9 प्रकार की ओनियाँ, और इन्हीं के भेद प्रभेद होकर अपन कहते 84 लाख प्रकार से जन्म लेने के स्थान हैं। आज का साइंस 10 लाख प्रकार की जो वनस्पति है उसमें से कुल 30,000 प्रकार की वनस्पति खोज पाए हैं 10 लाख प्रकार में से अभी वर्तमान में। जरायुज अंडस पोता नाम गर्भा, और वो जो गर्भ जन्म होता है वो जन्म भी 3 प्रकार से होता है। एक तो जरायुज जैसे अपन का जन्म होता है, अपने ऊपर एक मांस का कवर शिराओं से जकड़ा हुआ उसके भीतर, क्योंकि अपन उपद्रवी लोग हैं, हाथ पैर हिलाएंगे तो तकलीफ होएगी उधर, तो उसको एक कवर अप कर दिया पूरा, वो जरायु कहलाता है। मांस इत्यादि से लिप्त ऊपर एक जाल जैसा होता है उसमें जो जन्म होता है वो जरायुज कहलाता। अंडस जिसमें कि अंडे के भीतर वो जीव अपने बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है, ऊपर की त्वचा जो है वो मोटी होती है, वो अंडस प्रकार का। पोतज जीव होते हैं ये हिरण वगैरह, वो तो माँ के पेट से बाहर आए नहीं और बस एकदम दौड़ना शुरू, उनके ऊपर कोई कवरावर नहीं होता है। माँ को जैसे गाय को आपने जन्म पे देखा होगा, उसको चाटना पड़ता है और वो चाट करके उसको पूरा उसके जरायु को अलग कर देती और तुरंत खड़ा हो जाता, लेकिन हिरण वगैरह में तो माँ के पेट से आया और दौड़ना शुरू हो गया। ये 3 प्रकार से ही तो जन्म होता, गर्भ में जो भी जन्म होता वो जरायु प्रकार से होता या अंडे में होता या कि पोतज अर्थात उत्पन्न होते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। देखिएगा इतना तो आज साइंस भी नहीं बता पाएगा कि इतने प्रकार से जन्म होता है, और हमारे यहाँ तो जन्म के सब प्रकार लिखे हुए हैं। देव नारकानाम उपादा, देव और नार की जीवों का उपाद जन्म ही होता है। शेषानाम सम्मूर्षण, इसके अलावा जितने भी जीव हैं वे सब सम्मूर्षण प्रकार के हैं। इनके बारे में और बहुत डिटेल नहीं बता पाऊँगा, लिखा मेरे पास बहुत डिटेल है। अब देखिएगा इनके शरीर कैसे होता, अपन ने जन्म तो ले लिया, इतने प्रकार से अपन ने जन्म लिया, अब उसमें शरीर किस प्रकार का होगा, तो कहते हैं औदारिक वैकिरक आहारक तेजस कारमणानी शरीरानी, 5 प्रकार के ही शरीर होते हैं जिनको कि जीव धारण करता है। परम परम सूक्ष्मम, और ये अब इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, नहीं तो वैसे टाइम बहुत कम पड़ता है मेरे ख्याल से, मैं कितना ही फास्ट करूं, लेकिन औदारिक शरीर स्थूल शरीर को, ये जो शरीर है ना ये औदारिक शरीर, ये स्थूल शरीर है। स्थूल का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझना कि मोटा भारी भरकम, अरे नहीं, वो एक इंद्री जीव है ना, उसका भी औदारिक शरीर है, वो अपन को दिखता तक नहीं, ऐसा भी हो सकता है, पर यहाँ स्थूल का मतलब है जो किसी भी छोटी सी बाधा के द्वारा भी रोक दिया जाए या दूसरे के दूसरा जिससे रुक जाए वो कहलाता है स्थूल। जो बाधित हो या बाधित किया जा सके वो स्थूल शरीर है, ऐसा औदारिक शरीर है। उससे भी सूक्ष्म होता है वैकिरक शरीर, और उससे भी सूक्ष्म होता है आहारक शरीर। वैकिरक शरीर को अपन इलेक्ट्रिक बॉडी कह सकते हैं, कहना चाहें या कि एक नया शब्द है ट्रांसफॉर्मेबल बॉडी, जिसमें कि हम विभिन्न रूप बना सकते हैं, जिसके छोटे बड़े कई रूप बनाए जा सकें, वो वैकिरक शरीर है। आहारक शरीर ये ओकेजनल प्रोजेक्शन है जो किसी महामुनि के द्वारा ही किसी विशेष कंडीशन में, जैसे कि उनको अकृत्रिम जिनालय की वंदना करनी है या पंचकरण के इत्यादि में जाना है, या बहुत अधिक कोई शंका मन में आ गई तो केवली भगवान तक जाना है, या तीर्थ वंदना का बहुत तीव्र विकल्प हो गया है, तब ऐसे मौके पर उनकी तपस्या के फलस्वरूप जो एक प्रोजेक्शन होता है वो आहारक शरीर कहलाता है। तेजस शरीर तो 2 प्रकार का होता है, एक अपने भीतर जिससे कि हमारा पूरा भोजन पचता है और जिससे हमारे शरीर में कांति होती, मरे हुए देह को देखो कैसी रहती, कांतिहीन, और जीवित देह में कांति रहती, वो तेजस शरीर है। वो 2 प्रकार का है, भीतर ही भीतर कांति भी देता है और हमारे शरीर को में जो अपन भोजन करते हैं उसको डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करता है, ये दोनों काम तेजस शरीर के। और कारमण शरीर, कर्मों के 8 कर्मों के समूह का नाम ही कारमण शरीर है। इस तरह से 5 प्रकार का शरीर ही इस संसार में संसारी जीव के होता है। परम परम सूक्ष्मम, ये सब क्रम से सूक्ष्म होते जाते चले जाते हैं, लेकिन प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग तेज साथ, लेकिन ये क्रम से असंख्यात प्रदेश वाले होते जाते हैं। जैसे कि रुई और लोहे का एक गोला, 1 किलो रुई रख लीजिएगा और 1 लोहे का 1 किलो का बांट रख लीजिएगा, कितना छोटी जगह घेरता है, लेकिन रुई 1 किलो कितनी बड़ी जगह घेरती है, जिसमें कॉम्पैक्ट कम है, प्रदेश जो है प्रदेश तो ज़्यादा है लेकिन सूक्ष्मता बहुत है। तो औदारिक शरीर में प्रदेश कम है, सूक्ष्म भी कम है, वैकृत शरीर उससे ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन प्रदेश भी उसमें ज्यादा है। असंख्यात गुने प्रदेश अलग हैं, अधिक हैं, उससे अधिक प्रदेश वाला है आहारक शरीर, पर वो और ज्यादा सूक्ष्म है। कहते हैं अनंत गुणे परे, लेकिन ये तो असंख्यात असंख्यात गुणे होते चले जाते हैं, पर तेजस और कारमांड उससे अनंत अनंत गुणे प्रदेश वाले हैं, इतने अधिक उनके भीतर प्रदेश हैं, कॉम्पैक्टनेस उनके भीतर है। जैसे साइंस की भाषा में कहते हैं ना, पारा सबसे ज़्यादा वजनदार, इतना थोड़ा सा भी हो लेकिन उसका वेट बहुत अधिक होता, वही चीज़ ये है। अप्रतिघाते, और ये जो आखिरी के दो शरीर हैं वो प्रतिघाती नहीं हैं, उनका घात नहीं किया जा सकता, अर्थात वे किसी के द्वारा बाधित नहीं होते हैं। अनादि संबंधे छा इस संसारी जीव के साथ अनादि काल से ये तेजस और कारमण शरीर लगे हुए हैं। कोई भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जो तेजस और कारमण शरीर से रहित हो, बस औदारिक शरीर वैक्रिय शरीर ये दो उसके लिए हमेशा मिलते रहते हैं। वो अपनी जिस तरह की कर्म की स्थिति होती हैं वैसा प्राप्त कर लेता है। सर्वस सभी जीवों के ये अनादिकाल से हैं। एकादिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक जीव को एक साथ चार शरीर मिल सकते हैं। तेजस कारमण शरीर तो हमेशा से उसके पास परमानेंट है, अगर वो चाहे तो औदारिक शरीर बना लेता है, और औदारिक शरीर के साथ अगर वो विक्रिया करने की क्षमता रखता है तो एक वैक्रियक भी हो गया, और कोई मुनि महाराज अगर आहारक शरीर बनाते हैं तो उनके वो चौथा आहारक शरीर भी इस अपेक्षा हो जाता। इस प्रकार मैक्सिमम एक जीव के चार ही शरीर हो सकते हैं। निरुपभोगम अंत्यम, अंतिम जो तेजस और कारमण शरीर है वो पाँचों इंद्रियों और मन की पकड़ से बाहर है। इस प्रकार ये शरीर के बारे में बात हो गई, और जो हमने कहा कि औदारिक शरीर, वो औदारिक शरीर किस किस के होता है, तो गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम, आदि का जो औदारिक शरीर है वो गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों के ही होता है। अगर सम्मूर्छन जन्म है या गर्भ जन्म है तो नियम से औदारिक शरीर है। औपादिकम वैक्रिकम, अगर उत्पाद जन्म लिया है तो वैक्रिक शरीर मिलेगा। देखो सम्मूर्छन जन्म है और गर्भ जन्म है, उत्पाद जन्म है, शरीर के साथ उनको रिलेट कर रहे हैं कि अगर गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं तो उनका शरीर औदारिक रहेगा, स्थूल शरीर मिलेगा। अगर उत्पाद जन्म वाले हैं तो उनका शरीर वैक्रिक शरीर होगा, और वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यमचा, ऐसा नहीं है कि देवनारकी कोई मिलते हैं वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर मनुष्य तिरंज के भी हो सकता है, लेकिन कैसे, लब्धि प्रत्यमचा, लब्धि अर्थात तपस्या से जो विशेष शक्ति उत्पन्न होती है उसके द्वारा भी वैक्रिक शरीर प्राप्त हो जाता है। अपन पढ़ते हैं ना चक्रवर्ती के 66,000 रानियां होती और उसको इतनी विक्रिया करने की क्षमता भी होती, वो सब क्या है, वो यही चीज़ है लब्धि के द्वारा। तेजसमपि, तेजस शरीर भी लब्धि से प्राप्त होता है। अभी तो अपन ने तेजस शरीर वो वाली चर्चा की जो अपने भीतर है, जो कांति देता है और पाचन में सहयोगी बनता है। एक तेजस शरीर सुना होगा, दीपायन मुनि को क्रोध आया या कोई मुनि महाराज को करुणा आई, तो क्रोध या करुणावश जब उनके शरीर से एक प्रोजेक्शन होता है, एक तेज आभा निकलती है जो या तो नष्ट कर देती है या कि समृद्ध कर देती है, उसको भी तेजस शरीर बोलते हैं। ये निश्रणात्मक तेजस शरीर कहलाता है, बाहर निकलने वाला, ये 12 योजन के एरिया को पूरा घेर लेता है। और क्रोध के वशीभूत अगर किसी मुनि के निकला होगा तेजस शरीर लब्धि के द्वारा, तो वो सबको नष्ट कर देगा, जैसे द्वारका नष्ट हो गई। और अगर 12 योजन तक करुणावश निकला है तो सब अग्नि लगी होगी तो शांत हो जाएगी, दुर्भिक्ष होगा तो शांत हो जाएगा, दोनों तरह का। तो इसलिए कहते हैं कि तेजस शरीर भी लब्धि आत्मक है। और शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहार कम प्रमत्त संयत सैव, लेकिन आहारक शरीर कैसा है, अत्यंत शुभ है और विशुद्ध है, किसी के द्वारा वज्र के द्वारा भी उसे बाधित नहीं किया जा सकता, और वो सिर्फ प्रमत्त संयत महामुनि के होता है, छठे सातवें गुण स्थान में विचरण करने वाले मुनि के ही उस शरीर की उपस्थिति होती है, वो शरीर उन्हीं के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। अब विभिन्न जो जीव हैं उनके अपने सेक्स किस प्रकार के हैं, उनकी अपनी इच्छाएं किस प्रकार की हैं, तो कहते हैं नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, नारकी जीव और जो सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वे तो नपुंसक ही हैं। नपुंसक के मायने होता है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों की आकांक्षा, जिसे सिर्फ स्त्री की आकांक्षा हो वो पुरुष वेद, जिसे पुरुष की आकांक्षा हो वो स्त्री वेद, बस सीधा सा ऐसा ऐसा मानिएगा इसको, तो ये वेद कहलाते हैं। ये हमारे भीतर की भावनाओं का प्रतीक है। हम फील करते हैं ना कि मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य हूँ तो फिर मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये जो फीलिंग है यही तो वेद है। ये हमारे भीतर जो भावना, कभी भी किसी को ये कहते नहीं सुना होगा पुरुष को मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे हैं, और किसी भी बहन को ये कहते हुए नहीं सुना मैं जाता हूँ, तो इन लोगों को पूजा में भी बड़ी दिक्कत होती कि उसकी जगह हम ता ते ती ऐसा कुछ कर लें, क्या कर लें, चेंज वेंज कर लें क्या इस तरह का। नहीं, हम जब पूजा करते हैं तब तो हम ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं ना कोई हैं, हम तो सिर्फ जीवात्मा हैं, इसलिए इस तरह करना चाहिए। पर बाकी समय फीलिंग बनी रहती है, कितनी प्रगाढ़ फीलिंग है हमारी वेद की और शरीर की, बहुत अधिक। और शरीर और वेद का वर्णन सुन करके हमें वेद और शरीर इनसे पार होने की कोई प्रक्रिया कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम वो नहीं हैं एक्चुअली। जबकि 24 घंटे हमें मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या कि मैं शरीर में हूँ, या कि मैं ही शरीर हूँ, ऐसी फीलिंग बनी रहती, जबकि ये शरीर अलग है और मेरे अंदर जो आत्मा बैठा वो अलग है। इससे हमें ये भी शिक्षा लेते रहना चाहिए। तो नारकी जीव और समूल संजीव हमेशा नपुंसक ही होते हैं ना देवा, लेकिन देवों में नपुंसक नहीं होते, स्त्री या पुरुष दो ही वेद होते हैं, देव और देवांगनाएं होती हैं, शेषास्त्री वेदा। लेकिन शेष जो जीव हैं वे तो तीनों प्रकार के वेद वाले हैं, मनुष्य तिरंच में स्त्री पुरुष नपुंसक सभी प्रकार के वेद हैं। इनके बारे में अब मुझे कोई डिटेल आपसे नहीं कहना है। आखिरी वाले सूत्र पर अपन आ गए। मैंने पहली बार अपने जीवन में दूसरा अध्याय आपके यहाँ पर पढ़ाया है, आप इसको अपना सौभाग्य जरूर मानिएगा और पूरा होने को है। और आखिरी सूत्र मेरे हाथ में है, नहीं तो मेरे जिम में आता है पहला तीसरा पाँचवा सातवा ऐसे करके हमेशा जब से कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब तीसरा और पांचवा तो बहुत मुश्किल है, तो वो मेरे जिम में आता है। क्यों चुप लग जी, तीसरा वाला वो थोड़ा कठिन है, उसमें पूरा साइंस है। अपन पढ़ेंगे तीसरा और पांचवा अध्याय, दूसरे अध्याय का आखिरी सूत्र बहुत कीमती है। अब हमें बताते हैं कि हम संसार में रहकर भी मरण किस प्रकार का करते हैं। वास्तव में आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, ये तो शरीर का ही जन्म मरण है। तो जितनी जन्म की प्रक्रिया है वो सब शरीर की है, मरण की प्रक्रिया भी शरीर की है। प्राणों के वियोग का नाम मरण है, प्राणों के संयोग का नाम जन्म है और कुछ नहीं। वो प्राणों का वियोग दो प्रकार से हो सकता है। असल में हमारा साइंस ये है जैन दर्शन का कि कोई भी जीव अपने जीवन में नई आयु बांधे बिना मरण नहीं कर सकता। जब तक वो आगे के लिए अपनी आयु डिसाइड नहीं कर लेता तब तक ये जो आयु है वो भोगता रहता है। अब हम अपने जीवन में आगामी जीवन की आयु बांध लेते हैं, वो दो प्रकार से बनती है, एक तो अनपवर्त आयुष्क और एक अपवर्त आयुष्क। एक्चुअली तो जब हम आयु बांधते हैं उसी समय हम उसमें कमी बेशी कर सकते हैं, बाद में जब हम आयु भोगने लगते हैं तब उसमें उत्कर्षण अपकर्षण नहीं कर सकते। लेकिन विषभक्षण इत्यादि के द्वारा बांधी गई आयु घात को प्राप्त अवश्य हो जाती है, इसलिए इसी का नाम अकाल मरण है। इस सूत्र में बताया है कि दोनों तरह से मरण होता है, अकाल में भी होता है और सकाल में भी होता है। औपादिक चर्मोत्तम देहा संखे वर्षायुषो न पवर्त आयुषा। अनपवर्त आयुष्क कौन से हैं, अर्थात जिनका अकाल में मरण नहीं होता, वे जीव हैं उपपाद जन्म वाले, अर्थात देव और नार की जीव जितनी आयु बांधते हैं उतनी पूरी की पूरी बेभोगते हैं, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। कोई नार की जीव घबरा के सोचे कि जल्दी से आत्महत्या करके मर जाऊं, मर नहीं सकते बाबा, पूरी भोगना पड़ेगी, कोई चांसेस नहीं है सुसाइड के, घात करने के आयु का पूरी भोगना, ये कहलाते हैं उपाद जन्म वाले जीव। और चर्मोत्तम देहा, जिनकी वो देह जो मिली है वो अंतिम देह है और उत्तम है, दोनों विशेषण है, चरम भी है और उत्तम भी है। कौन की है, तीर्थंकर हैं भैया। चरम और उत्तम देह वाले, इनका अकाल में मरण नहीं होगा। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य कौन से हैं बताओ, भोग भूमि के रहते हैं, एक पल दो पल तीन पल की आयु होती, असंख्यात वर्ष की आयु है। बस इतने जीव हैं जिनका की अपनी आयु का घात नहीं होगा, बाकी सब जीवों के आयु का घात हो जाता है। कई बार बाह्य निमित्त मिलने पर भी अपनी आयु का घात नहीं होता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हमने जो आयु बंद किया है वह बहुत सशक्त किया है, इसलिए बाह्य निमित्त मिलने पर भी मरण नहीं होता। वास्तव में तो ये जो जीव हैं, जो पांच जन्म वाले हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं या उत्तम चरम देह वाले हैं, इनके बाह्य निमित्त मिलने पर भी मरण नहीं होगा, इनकी आयु का घात नहीं होगा। बाकी सबके बाह्य निमित्त मिलने पर मरण हो सकता है, विष के भक्षण करने से या कि रक्त के अधिक श्राव हो जाने से, अनीति करने से, लिखा है उसमें जो व्यक्ति बहुत अनीति करता है, नीति न्याय पूर्वक जीवन नहीं जीता है, अन्याय करता, अनीति करता है, उसका भी जीवन समय से पहले नष्ट हो जाता है, घात को प्राप्त हो जाता है। हमें ये सूत्र इसीलिए बताया गया है, आपको अकाल मृत्यु मानना हो मानो, न मानना हो न मानो, हमें इससे कोई ज़्यादा फर्क, हम यहाँ सिद्ध करने नहीं बैठे कि अकाल मृत्यु होती। हम तो ये जानते हैं अकाल मृत्यु का विषय भले ही विवादित हो, लेकिन मृत्यु कर्मानुसार होती है और वाही निमित्त पूर्वक भी मरण संभव है। इसलिए भैया दूसरे के लिए मरण में वाही निमित्त मत बनना न बनाना, बस इतनी सी बात है। आपको अकाल मरण नहीं मानना हो तो नहीं मानो, लेकिन दूसरे का हमारे निमित्त से मरण संभव है, उसके प्राणों का घात हमारे निमित्त से हो सकता है। इसलिए हमें तो इस सूत्र को पढ़ करके, और चूँकि हम सब जो है संसारी जीव हैं और हमारी आयु का घात परिणामों के द्वारा या किसी बाह्य निमित्त के द्वारा हो सकता है, इसलिए देखो मौत के करीब आने पर बचाव का उपाय नहीं करना, ये अपने आप मरने का ढंग है और कुछ नहीं। ये सोच करके कि चीटी चली जा रही है और उसका अकाल मरण तो हो ही नहीं सकता, हम पैर रखेंगे आयु पूरी हो गई होगी सो मर जाएगी, नहीं भाई ये सो न मर है, हमें दोष भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है भैया। चीटी पर पैर रखेंगे उसका मरण हमारे निमित्त से होगा तो हिंसा का पाप लगेगा। अगर हम अकाल मरण नहीं मानते हैं तो इसका मतलब हम हिंसा अहिंसा कोई ठीक से नहीं मानते हैं। रास्ते में ठीक ठीक ढंग से चलने का मतलब क्या है, यही मतलब है। रास्ते में कोई बिल्कुल बीचों बीच नहीं चलता ये सोच करके कि जब आयु आज उम्र है ऐसे को नहीं मार सकत तो चलो बीच में से, और फिर मोटर आ जाए सो फिर नहीं कहियो, वो मोटर वालों भी कह दे कि जो इतना ही हती तुम्हारी। जब भी कोई मरण होता है तो क्या पूछते हैं, क्या भैया कितनी उम्र हो गई, 40 के हती, अरे तो अबे कहाँ, अबे 40 के तो भैया थे, अबे कहाँ, ऐसा कहने में आएगा अभी तो बहुत कम आयु थी। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, ए भैया दुखी न हो इतनी ही आयु होगी। अब मुझे बताओ पहली बात झूठी के दूसरी, दो ही सच्ची हैं, दो ही व्यवहार है। पहले ये कहने में आता है कि 40 साल तो बहुत थोड़े हैं, फिर मन के संतोष के लिए कि भैया इसी निमित्त से ऐसा ही जो है आयु का क्षय होना होगा इसलिए संतोष धारण करो। देखो मरण तो चाहे अकाल हो चाहे सकाल हो व्यवहार से हैं, निश्चय से तो ने आत्मा मरती है उन्हें आत्मा जन्म लेती है। स्वपन को तो व्यवहार में जीना है, सो ध्यान रखना है कि किसी का अपने निमित्त से प्राणों का घात ना हो। इस सूत्र से हमें यही शिक्षा देनी चाहिए। पूरा दूसरा अध्याय हमें जीवों की जानकारी देकर अहिंसा के लिए प्रेरित करता है। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की।